का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ के पिछले भाग में आपने सुना कि श्रेया और सार्जेंट सलीम सही सलामत गुलमोहर विला पहुंच गए। श्रेया को सुहराब ने उसके फ्लैट जाने से मना कर दिया। उसके बाद कैप्टन किशन के पास सुहराब भेस बदल कर हीरों के व्यापारी के तौर पर ऑफिस मिलने गया। इन सारे भेस बदलने का राज क्या है? कैप्टन किशन पर क्या सुहराब की नजर है? जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर का ये भाग। विक्रम के खान अपने बंगले में कैद होकर रह गया था। उसने दो बार निकलने की कोशिश की थी, लेकिन दो लोगों को अपनी निगरानी करते पाया। उसके बाद वो लौट गया था। उसने समझा था कि ये क्लब में मिले विदेशी के संगी साथी हैं। उसने दोनों बार ही सोहराब को फोन मिलाया था, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगी थी। वो अभी तक शियाली के बंगले में ही रह रहा था। विक्रम जिन्हें विदेशी का साथी समझ रहा था, दरअसल उन्हें सोहराब ने उसकी सुरक्षा के लिए लगवाया था। पिछले दिनों विक्रम पर गोली चलाई गई थी, उसके बाद से ही दो सिपाही उसकी निगरानी में लगाए थे। शियाली के लापता होने के बाद विक्रम ने अपनी दिनचर्या काफी सीमित कर ली थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता था। उसने आज फिर स्टूडियो जाने की तैयारी की थी। उसने कोट की जेब में इटली मेड पिस्टल रख ली थी और तय किया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो मुकाबला करेगा। शाम हो रही थी। विक्रम कार में सवार हुआ और कार बाहर निकल गई। उसके बंगले से कुछ दूरी पर एक आदमी बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। विक्रम उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने के बाद उसने कार के बैक मिरर में देखा, लेकिन पूरी सड़क खाली पड़ी थी। उसका पीछा नहीं किया जा रहा था। उसने इत्मीनान की सांस ली और कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर के सफर के बाद कार डे स्ट्रीट की तरफ मुड़ गई। इसी रोड के एक फ्लैट में उसका स्टूडियो था। यहीं विक्रम पेंटिंग्स बनाता था। कार को पार्क करके जब वो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो उसे ताला खुला हुआ मिला। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो अंदर पहुंचा तो यहां का नजारा ही बदला हुआ था। पूरा हॉल उलट पुलट कर रख दिया गया था। वो दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उसने एक्सटेंशन से फोन मिलाकर गार्ड को ऊपर बुलाया। गार्ड कसमें खा रहा था कि उसने किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखा। विक्रम ने उसे जमकर फटकार लगाई। उसे वापस भेजने के बाद वो कोतवाली के नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से कोतवाली इंचार्ज मनीष की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने उसे पूरी बात बता दी। कुछ देर बाद मनीष दो हमराहियों के साथ डे स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ा। स्टूडियो पहुंचकर मनीष ने मौका मुआयना किया, लेकिन उसे कोई खास बात नजर नहीं आई सिवाय इसके कि सारी पेंटिंग्स बुरी तरह से बिखरी हुई थी। विक्रम ने गार्ड से नया ताला मंगवा कर लगवाया और उसे ताकीद करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मनीष के साथ कोतवाली रवाना हो गया। फैंटम अब रेड मून नाइट क्लब की तरफ जा रही थी। सड़क पर इस वक्त हर तरफ रंगीनियां बिखरी हुई थी। गर्मी के दिन थे, लोग शाम होते ही बाहर घूमने निकल पड़ते थे। सड़क पर रश ज्यादा होने की वजह से फैंटम स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी। सोहराब पीछे की सीट पर बैठा सिगार पी रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्लब पहुंचकर सोहराब सीधे जुआ खाने वाले हिस्से में चला गया। जुआ खाने में अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी। रात के 9 बजे के बाद जुआ खाना अपने शबाब पर होता था। सोहराब कोने की खाली मेज के सामने पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और टेबल पर रख दी। एक बाउंसर उसके पास आया और टेबल से रुपए उठाकर चला गया। कुछ देर बाद वो क्वाइन लेकर आया और सोहराब की टेबल पर रख दिए। ये वही बाउंसर था जिसने पिछले दिनों फर्जी तौर पर कत्ल होने का ड्रामा किया था। उसे पुलिस ने पकड़ भी लिया था, लेकिन बाद में सोहराब ने उसे आजाद करवा दिया। वो कई हफ्तों तक गायब रहा। लौटने के बाद उसने पूछने वालों को कहानी सुना दी कि गोली से ज्यादा गहरा घाव नहीं था और वो बच गया। बाउंसर क्वाइंस रख कर जाने लगा तो सोहराब ने उसे रोक लिया। वो आकर सोहराब के पास खड़ा हो गया। सोहराब ने 5-5 सौ के दो नोट बढ़ाते हुए बदली हुई आवाज में कहा, तुम्हारे लिए हैं। बाउंसर खुश हो गया और नोट लेकर तुरंत ही पैंट की जेब के हवाले कर दिए। उसके बाद उसने पूछा, काम बताइए सर।
आदमी समझदार हो, विक्रम के खान के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। वो क्लब में कब कब आता है, कब जाता है, और आम तौर पर कितने रुपए जुए में उड़ाता है, और उस पर क्लब का कितने रुपए का क्रेडिट है।
बाउंसर जाने लगा तो सोहराब ने धीमी आवाज में कहा,
सारे डिटेल एक घंटे में चाहिए।
बाउंसर के जाने के बाद सोहराब वहां से उठ गया और जुए की एक टेबल पर जाकर बैठ गया। वहां ताश के पत्ते फेंटे जा रहे थे। सोहराब ने भी बाजी लगाना शुरू कर दिया था। वो धीरे धीरे हारता जा रहा था। उसके बाद उसने जीतना शुरू किया। जब उसकी हारी हुई रकम वापस आ गई तो वो वहां से उठ गया। सोहराब अपनी पुरानी टेबल पर लौट आया। वो अभी भी खाली थी। एक घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बाउंसर आता दिखाई दिया। वो उसके सामने आकर बैठ गया। बाउंसर किसी रेडियो की तरह चालू हो गया था।
विक्रम सर पहले तो रोज आते ही थे, लेकिन इधर उनका आना काफी कम हो गया है। बल्कि वो पिछले काफी दिनों से यहाँ नहीं दिखे हैं और उन पर 2 करोड़ रुपए क्रेडिट है।
बदले में कुछ जमा करवाया होगा?
5 करोड़ रुपए की एक प्लेटिनम और हीरे वाली घड़ी जमा करवाई थी।
और कोई खास बात?
नहीं सर। हाँ एक बात है, कभी कभी उनके साथ एक मैडम जरूर आती थी।
उसकी इस बात पर सोहराब चौंक उठा। उसने बाउंसर से पूछा,
अगर उन मैडम की तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे?
जी सर बिल्कुल।
सोहराब ने कॉइन बाउंसर के हवाले कर दिए। वो उन्हें रुपयों में कन्वर्ट करके ले आया। मूल रकम से जीती गई राशि सोहराब ने बाउंसर के हवाले कर दी और वहां बैठ गया। सोहराब जब कोठी पर पहुंचा तो रात के 10:30 बज रहे थे। नौकरों ने बताया कि सलीम और श्रेया दोनों ही अभी तक सोए हुए हैं। उसने नौकर से डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने को कहा। इसके बाद वो सीधे सलीम के कमरे की तरफ बढ़ गया। सलीम गहरी नींद में सो रहा था। सलीम को सोते हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे। उसने सलीम को जगा दिया। वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। कुछ देर बाद ही करीमा कॉफी लेकर आ गया। सोहराब ने सलीम को कॉफी बनाकर दी। कुछ चुस्कियों के बाद ही उसमें स्फूर्ति का संचार हो गया। कॉफी खत्म करने के बाद सलीम वॉशरूम में चला गया। सोहराब ने एक्सटेंशन से श्रेया का नंबर डायल किया, लेकिन कई घंटियों के बाद भी फोन नहीं उठा। सलीम मुंह पर पानी के छींटे मारने के बाद वॉशरूम से बाहर निकल आया। दोनों बेडरूम से कॉरिडोर में आ गए। सोहराब डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिया। सलीम ने वहीं रुककर श्रेया के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा हल्का सा खुल गया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। सलीम ने दरवाजा उड़का दिया और बाहर से ही श्रेया को आवाज देता रहा, लेकिन श्रेया की कोई आवाज नहीं आई। इंस्पेक्टर सोहराब को छोड़कर जब कैप्टन किशन वापस पहुंचा तो वहां शैलेश जी अलंकार खड़ा हुआ पलकें झपका रहा था। वो ऑफिस के दूसरे रास्ते से अंदर आया था। काफी थका नजर आ रहा था। उसे देखते ही कैप्टन किशन ने पूछा,
लौट आए?
जी सर, 3 घंटे पहले ही लौटा, जरा घर चला गया था।
उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कैप्टन किशन ने कहा,
तुम किसी को भी असिस्टेंट बना लेते हो है?
उसके लहजे में थोड़ी नाराजगी थी।
मैं समझा नहीं सर,
शैलेश जी अलंकार ने घबराए हुए अंदाज में कहा।
तुम किसी आदमी को कोठी पर लेकर आए थे?
अच्छा सर, वो आप जी लेकर आया था, वो मेरा पुराना दोस्त है।
शैलेश ने झूठ का सहारा लिया।
कब से जानते हो उसे?
हमने साथ में पढ़ाई की थी,
शैलेश ने साफ झूठ बोला। वो भाप गया था कि बात जरूर कुछ खास है, वरना उससे इतने सवाल जवाब नहीं होते।
सब कुछ रेडी रखना, जल्दी ही फिर से शूटिंग शुरू करनी है,
कैप्टन किशन ने बात बदलते हुए कहा।
आप जब कहेंगे शूटिंग कर देंगे,
शैलेश ने किसी आज्ञाकारी छात्र की तरह जवाब दिया।
अब आप जाइए, आराम कीजिए।
उसकी बात पर शैलेश ने तुरंत अमल किया और तेजी से बाहर निकल गया। शयाली के लापता होने के बाद से विक्रम के खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ऐसा लगता था कि जैसे कोई शाप उसका पीछा कर रहा है। जिस तरह से उसके स्टूडियो को तहस नहस किया गया था, इससे वो काफी भनाया हुआ था। FIR लिख जाने के बाद कोतवाली इंचार्ज मनीष उसे अपने कमरे में ले आया। विक्रम उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया। मनीष ने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया और 2 कॉफी लाने का हुक्म दिया। फोन क्रेडल पर रखने के बाद उसने विक्रम से पूछा,
भला आपकी पेंटिंग में किसी को दिलचस्पी क्यों हो सकती है?
मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, विक्रम ने मनीष की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मेरा मतलब है कि कोई आपकी पेंटिंग चोरी करने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करेगा भला?
मैं आपकी बात अब भी नहीं समझ पा रहा हूं।
अरे मैं ये कहना चाहता हूं, मनीष ने बात को बीच में रोक कर गिलास से दो घूंट पानी पिया, उसके बाद अपनी बात दोबारा शुरू की, कि पेंटिंग का शौक इलीट क्लास के लोगों में होता है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, भला आम चोर उचक्कों को आपकी पेंटिंग में क्या दिलचस्पी हो सकती है? आपके स्टूडियो में पेंटिंग के अलावा दूसरा कोई कीमती सामान तो है नहीं?
मेरी पेंटिंग सोने से भी ज्यादा महंगी है, विक्रम ने गंभीरता से जवाब दिया।
बात आपकी ठीक है, ठीक है, मनीष ने अपनी बात को संभालते हुए कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि चोर को पेंटिंग से क्या दिलचस्पी हो सकती है?
इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन स्टूडियो का ताला तोड़कर चोर अंदर तो घुसे थे ही।
इनफैक्ट आप भी देख चुके हैं कि पेंटिंग्स किस तरह उल्टी पलटी गई थी, विक्रम ने कहा।
कोई पेंटिंग चोरी तो नहीं हुई है?
ये मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आप स्टूडियो का हाल तो देख ही चुके हैं। सब कुछ पहले जैसी हालत में कर देने के बाद ही पता चल सकेगा कि चोरी क्या हुआ है।
शायद उसे किसी खास पेंटिंग की तलाश रही हो, मनीष ने विक्रम को गहरी नजरों से देखते हुए कहा।
What can I say? विक्रम ने भी मनीष की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहा। मनीष कुछ कहने जा ही रहा था कि अर्दली कॉफी ले आया, उसके बाद दोनों कॉफी पीने लगे। कॉफी खत्म करने के बाद विक्रम उठ गया। मनीष ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा,
अगर कुछ पता चले तो बताइएगा।
ओह श्योर श्योर, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं। जब विक्रम बाहर निकला तो अंधेरा घिर आया था। उसे यकीन था कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करेगी, लेकिन एहतियातन उसने FIR लिखवा दी थी। वो कार में बैठ गया और मोबाइल से एक नंबर डायल किया। फोन कनेक्ट होते ही विक्रम ने पूछा, कहाँ हो?
शेक्सपियर कैफे।
अकेली हो?
नहीं, कोई और भी है।
उसे दफा करो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं।
मुझे तुम्हारा लहजा पसंद नहीं आया, ठीक है?
दूसरी तरफ से कहा गया और फोन काट दिया। विक्रम ने कार स्टार्ट की और कोतवाली के अहाते से बाहर निकल आया। कोतवाली से बाहर आते ही विक्रम की कार का पीछा शुरू हो गया। विक्रम किसी उलझन में था, इसलिए उसे इसका एहसास नहीं हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है। वैसे भी वो बेखौफ जीने वाला इंसान था। उसने कभी इसकी परवाह ही नहीं की कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं या कौन उसकी टोह में है। विक्रम की कार का पीछा बदस्तूर जारी था। उसकी कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी कार शेक्सपियर कैफे पहुंच गई। उसने कार पार्क की और कॉफी हाउस के बड़े से हॉल में पहुंच गया। पीछा करने वाली कार से भी तेजी से एक आदमी निकलकर उसके पीछे आया था। उस कार में दो लोग थे, ड्राइवर अभी भी सीट पर ही था। वो कार को बैक करके सड़क पर लेकर चला गया। विक्रम जब हॉल में पहुंचा तो उसने एक टेबल पर हाशना को मोबाइल पर गेम खेलते पाया। वो हाशना के सामने की कुर्सी पर बैठ गया। पीछा करने वाला आदमी भी पास की एक टेबल पर था। वो टेबल इतने नजदीक थी कि वो आराम से दोनों की बातें सुन सकता था। हाशना ने तिरछी नजरों से देख लिया था कि विक्रम उसके सामने आकर बैठ गया है, लेकिन इसके बावजूद वो गेम खेलती रही। झुंझलाकर विक्रम ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। हाशना ने तेजी से उसके हाथ पर झपट्टा मारा, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा,
अरे यार मैं बस जीतने ही वाली थी, तुमने सब खराब कर दिया।
उसकी इस बात का विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हाशना से कहा,
मेरे स्टूडियो में चोरी की कोशिश की गई है।
अपनी बात पूरी करने के बाद विक्रम ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो अंदाजा लगाना चाहता था कि इस बात का हाशना पर क्या असर हुआ है।
है? किसने की चोरी? हाशना के मुंह से निकला।
पता चल जाए तो उसकी गर्दन न मरोड़ दूं, विक्रम ने शब्दों को चबाते हुए जवाब दिया।
क्या चोरी हुआ?
हाशना ने दोबारा सवाल किया।
चोर जो चोरी करने आए थे वो तो उन्हें मिला नहीं, बाकी का पता नहीं।
विक्रम का लहजा तंज भरा था।
कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो? हाशना ने सपाट लहजे में पूछा। हो सकता है इसके पीछे तुम ही हो।
अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? मुझ पर शक कर रहे हो? मैं इतनी छिछोरी नहीं हूं।
आशना का लहजा थोड़ा तेज था। शक की वजह है ना, इसलिए कर रहा हूं, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो मैं अब तक तुमसे शराफत से पेश आती रही थी क्योंकि तुम्हें मैं अपना दोस्त समझती थी। तुम घटिया और नीच आदमी हो। अब तो मैं हर हाल में अपनी पेंटिंग लेकर रहूंगी। ये कहते हुए हाशना उठ खड़ी हुई और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। विक्रम उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही हाशना पलट पड़ी। उसने विक्रम के कोट की जेब से अपना मोबाइल निकाला और तेजी से बाहर चली गई। दूसरी टेबल पर बैठा आदमी भी उठ खड़ा हुआ और वो हाशना के पीछे जा रहा था। काफी आवाज देने के बाद भी जब श्रेया की आवाज नहीं आई तो सार्जेंट सलीम फिक्रमंद हो गया। किसी लड़की के बेडरूम में बिना उसकी इजाजत के जाना उसूलन गलत था। सार्जेंट सलीम ये बात बखूबी समझता था, लेकिन श्रेया के रूम से आवाज न आने की वजह से वो काफी फिक्रमंद हो गया था। सार्जेंट सलीम वापस अपने बेडरूम की तरफ लौट गया। वहां पहुंचकर उसने पाइप सुलगाया और वापस श्रेया के रूम की तरफ लौट आया। श्रेया दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने सार्जेंट सलीम को देखते ही कहा, अरे क्यों शोर मचा रहे थे? कहां चली गई थी? आपका खाने पर इंतजार हो रहा है। मैं वॉशरूम में थी। इस वक्त वो नाइट गाउन में थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। सलीम कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया। आइए चलें। श्रेया और सलीम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। सोहराब ने उसके पैरों में लोशन लगाया था और खाने के लिए जो दवा दी थी उससे श्रेया को काफी आराम मिला था। जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो वहां सोहराब बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। उन दोनों को देखकर किताब बंद करके उसने एक तरफ रख दी और सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया।
कैसी तबीयत है अब?
फीलिंग गुड, थैंक यू।
सोने से पहले एक बार और पैरों में लोशन लगवा लीजिएगा, सुबह तक काफी आराम मिल जाएगा।
हराम खोरों ने जंगली खाना खिला खिला कर जुबान का जायका ही बिगाड़ दिया है, सलीम ने पहला निवाला मुंह में रखते हुए कहा। उसकी इस बात पर श्रेया मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद उसने सोहराब से पूछा,
सर सलीम साहब जंगल में श्याली से मिले थे, क्या उनकी तलाश शुरू हो गई है?
जी हाँ, सारा इंतजाम हो गया है। कल से पुलिस की कुछ पार्टियां और ड्रोन जंगलाती इलाके में श्याली की तलाश शुरू करेंगे।
इसके बाद तीनों खामोशी से खाना खाने लगे। कुछ देर बाद सोहराब ने अचानक श्रेया से पूछा,
श्याली के अपने चाचा यानी कैप्टन किशन से कैसे ताल्लुकात थे?
काफी बेहतर थे, वो श्याली का बहुत ख्याल रखते थे। श्याली को वो बंगला उन्होंने ही उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसके अलावा वो अच्छी खासी रकम हर महीने श्याली को जेब खर्च के लिए भी देते थे, श्रेया ने जवाब दिया।
कैप्टन किशन को विक्रम के खान से श्याली के रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं था कभी?
वो विक्रम को पसंद नहीं करते थे।
लेकिन क्यों?
क्योंकि एक बार उसने श्याली पर हाथ उठा दिया था और ये बात किसी तरीके से कैप्टन किशन को पता चल गई थी। दूसरे, उन्हें विक्रम के जुआ खेलने पर भी सख्त एतराज था। वो कहते थे कि विक्रम श्याली के पैसों पर ऐश कर रहा है।
लेकिन विक्रम की अपनी खुद की पेंटिंग्स भी तो करोड़ों रुपयों में बिकती हैं।
वो सारे पैसे बर्बाद कर देता है। उसके शौक अजीब हैं। उसे जुए के अलावा हथियारों का भी शौक है। इसके अलावा दुनिया भर में घूमता फिरता है।
यानी आपको विक्रम खान पसंद नहीं है?
मेरे पसंद न करने से क्या फर्क पड़ता है?
आपके कैप्टन किशन से कैसे रिश्ते हैं?
सोहराब के इस सवाल पर श्रेया के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। वो कुछ देर के लिए खामोश रही। उसके बाद उसने कहा, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद सोहराब ने कोई सवाल नहीं पूछा। अजीब बात यह थी कि इस गुफ्तगू के दौरान सलीम चुपचाप खाना खाता रहा। खाने से फारिग होकर वो तीनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नौकर कॉफी लेकर आ गया। श्रेया सबके लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी पीने के बाद सार्जेंट सलीम ने श्रेया के पैरों की मलहम पट्टी की और उसके बाद उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया। श्रेया ने कमरे में पहुंचते ही अंदर से चटखनी चढ़ा ली। उसने जाते वक्त सलीम को ना तो विदाई स्माइल दी और ना ही गुड नाइट कहा। उसका ये रवैया सलीम को बड़ा अजीब लगा। वो कुछ देर खड़ा श्रेया के बंद रूम के दरवाजे को देखता रहा। हाशना को जैसे सुबह होने का इंतजार था, वो सुबह 6 बजे ही सोहराब की कोठी पर पहुंच गई। सोहराब लॉन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। हाशना बिना बताए ही चली आई थी। अलबत्ता बाहर गार्ड ने सोहराब से जरूर बात की थी। सोहराब ने बड़ी खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया। रस्मी बातचीत के बाद उसने हाशना से पूछा,
जी बताइए कैसे तकलीफ की?
बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कई बार आपकी कोठी के चक्कर काट चुके हूँ, लेकिन आप कहीं बाहर गए हुए थे। अगर आप इजाजत दें तो आज शाम को बाबा को यहीं ले आऊं।
बाबा को मुझसे क्या काम आन पड़ा?
उसी पेंटिंग के सिलसिले में।
लेकिन वो पेंटिंग तो विक्रम के खान के पास है, उसने देने से मना कर दिया। इस मामले में भला मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ?
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। विक्रम पेंटिंग देने को राजी नहीं है और ये बात मैं बाबा को बता नहीं सकती कि वो पेंटिंग मैंने विक्रम को दे दी है। बाबा के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि उनकी इतनी पर्सनल चीज मैंने न सिर्फ देखी बल्कि उसे किसी को दे दिया है।
मिस हाशना, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। दरअसल ये आपका बहुत ही निजी मामला है, मैं पर्सनल लेवल पर भी इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।
सोहराब ने साफ लहजे में हाशना को मना कर दिया। सोहराब की इस बात से हाशना के चेहरे पर उदासी छा गई। वो फौरन ही जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर सोहराब ने उसे रोकते हुए कहा,
रुकिए कॉफी पी कर जाइएगा।
सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार बाबा से मिल लें, उन्हें ढांढस बंधा दें?
सोहराब के रोकने से उसे उम्मीद की किरण नजर आई थी और उसने बात को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी।
इससे क्या फायदा होगा?
मुझे कुछ वक्त मिल जाएगा और मैं विक्रम से वो पेंटिंग हासिल कर लूंगी।
आप कैसे हासिल करेंगी जब वो पेंटिंग देने को तैयार ही नहीं है? लेकिन आप पेंटिंग हासिल करने के लिए कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगी?
सोहराब ने हाशना की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। सोहराब की इस बात पर हाशना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी उसे लॉन की तरफ श्रेया आती नजर आई। श्रेया को देखकर हाशना चौंक गई। वो कभी श्रेया की तरफ देख रही थी और कभी सोहराब की तरफ। इसके बाद वो तेज कदमों से चलते हुए अपने कार की तरफ बढ़ गई। सोहराब उसे जाते हुए देखता रहा। इस बार उसने हाशना को कॉफी के लिए नहीं रोका। हाशना के जाने के बाद सोहराब गहरी सोच में डूब गया। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब श्रेया उसके सामने आकर बैठ गई।
बहुत सुबह उठ गई?
जी हाँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। सुबह 1 घंटा योगा करती हूँ।
अब आपका पैर कैसा है?
अब काफी हद तक ठीक हो गया है, काफी कमाल का लोशन है।
जी हाँ, लगाने के कुछ देर बाद ही हीलिंग शुरू कर देता है।
मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ।
मेरे ख्याल से आपको कुछ दिन यहीं रहना चाहिए, आपकी जान को खतरा है।
दरअसल मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। बाकी मैं अलर्ट रहूंगी अब।
ठीक है, आप नाश्ता कर लीजिए, सलीम आपको आपके घर तक पहुंचा देगा।
सोहराब ने कहा और सलीम का फोन नंबर मिलाने लगा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से सलीम की नींद में डूबी हुई आवाज आई।
हेलो,
सुबह कब की हो चुकी है, फ्रेश होकर तुरंत लॉन में आइए।
फोन काटने के बाद सोहराब ने सिगार के केस से सिगार निकाला और उसका कोना तोड़ते हुए श्रेया से पूछा,
आपको क्या लगता है अगर श्रेयाली की फिल्म रिलीज होगी तो क्या वो चलेगी?
अगर जल्दी रिलीज कर दी जाए तो फायदा मिल सकता है। अभी श्रेयाली मैम का गायब होना सुर्खियों में है,
श्रेया ने कुछ सोचते हुए कहा।
आप लोग श्रेयाली मैम को जंगल से कब तक तलाश लेंगे?
श्रेयाली अब कभी वापस नहीं आएगी।
अपनी बात को बीच में रोककर सोहराब ने गहरी नजरों से श्रेया को देखा। उसकी इस बात पर श्रेया को झटका सा लगा और वह सोहराब की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी आंखों की ताब न लाकर नजरें नीची कर ली। सोहराब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए बात पूरी कर दी।
श्याली मर चुकी है।
इस वाक्य ने जैसे श्रेया को हिला दिया। वो बेचैनी से सोहराब की तरफ देखने लगी। उसने अटकते हुए पूछा, लेकिन सर्जन सलीम श्याली मैम से जंगल में मिल चुके थे, आप लोग उन्हें तलाश क्यों नहीं करते हैं?
सलीम जंगल में जिससे मिला था वो श्याली की बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट है। उसे जानबूझकर सलीम के सामने लाया गया था।
डुप्लीकेट मतलब?
कोई है जो हमें भ्रमित करना चाहता है ताकि हम इस केस को बंद कर दें।
कौन है वो? श्रेया ने बेचैनी से पूछा।
वो भी जल्दी ही हमारी गिरफ्त में होगा,
सोहराब ने काफी मजबूत लहजे में कहा। सोहराब ने महसूस किया कि इस बातचीत के बाद श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया था। सोहराब खामोशी से बैठा सिगार पीता रहा। कुछ देर में सर्जन सलीम भी आ गया। श्रेया को इस हाल में देखकर उसे ताज्जुब हुआ। सर्जन सलीम को देखकर श्रेया ने कहा,
प्लीज मुझे घर तक छोड़ देंगे?
नाश्ता तो कर लीजिए,
सोहराब ने बीच में टोकते हुए कहा। नौकर नाश्ता ले आया और टेबल पर सजाने लगा। बहुत कहने पर श्रेया ने हल्का सा नाश्ता किया। सोहराब सिर्फ कॉफी पी रहा था। नाश्ता कर चुकने के बाद सर्जन सलीम और श्रेया मिनी पर सवार हो गए। कार गेट की तरफ बढ़ गई। मिनी के गेट से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही ब्लैक कलर की एक कार से उसका पीछा शुरू हो गया। क्या हुआ बेबी, इतना गुमसुम क्यों हो? सलीम ने श्रेया से पूछा।
बस तबीयत ठीक नहीं है,
श्रेया ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अरे तो कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए था, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता? उसकी इस बात पर श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। सलीम ने उसकी तरफ घूम कर देखा। श्रेया ने आंखें बंद कर ली थी। सलीम को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। पिछली रात को भी उसने सोने के लिए जाते वक्त सलीम को विश नहीं किया था। ये बात याद आते ही सलीम का मूड थोड़ा बिगड़ गया और वो खामोशी से कार चलाने लगा। क्या वाकई श्याली मर चुकी है और उसकी बॉडी डबल को सर्जेंट सलीम ने जंगल में देखा, या श्रेया से सच्चाई उगलवाने के लिए ऐसी कोई बात सोहराब ने उसके सामने रखी? आखिरकार कैप्टन किशन का श्रेया से क्या वास्ता है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सुनिए शोलागढ़ @34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।